नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। मिग-21 लड़ाकू विमान 62 वर्ष की सेवा के बाद आज वायुसेना से सेवानिवृत्त होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने पर बल दिया। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने में दुनिया के दोहरे मानदंडों की आलोचना की। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कारण सोनम वांगचुक के संगठन का FCRA प्रमाण पत्र रद्द किया। फलस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास की निंदा की, कहा शांति योजना पर अमेरिका के साथ सहयोग करने को तैयार। और एशिया कप 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, खिताबी मुकाबला भारत के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार तथा आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बिहार सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में मददगार साबित होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सशक्त महिला समृद्ध बिहार के संकल्प को पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ के पहले दिन 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में यह योजना आज शुरू की जा रही है। इसके तहत 7500 करोड़ रुपए DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना की परिकल्पना की गई है। सरकार ने कहा है कि रोजगार सही दिशा में जाने पर लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक निवेशक, विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र के निवेशक, भारत की तरफ बड़ी आशा के साथ देख रहे हैं। वे कल नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।
जब जब जो जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है।
भारतीय वायुसेना आज चंडीगढ़ में मिग-21 विमान को विदाई देगी। समारोह 60 वर्ष से भी अधिक समय तक देश की सेवा करने वाले इस विमान के एक युग के अंत का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सेवानिवृत्त वायुसेना प्रमुख VR चौधरी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ने वाले वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सेवा कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में प्रस्तुति के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विकास और शांति के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि विश्व को आतंकी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करना चाहिए। विदेश मंत्री ने प्रतिबंध लागू करने में विश्व के दोहरे मानदंडों की भी आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और वैश्विक विकास के बीच सहसंबंध पर ध्यान दे रहा है। गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के गैर सरकारी संगठन NGO का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सोनम वांगचुक की संस्था पर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के उल्लंघन का आरोप है। बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में संस्था के FCRA खाते में 3.5 लाख रुपए की राशि जमा की गई थी। इसके अतिरिक्त एक स्वीडिश दानदाता से 4,93,205 रुपए प्राप्त हुए थे। मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्र के संप्रभुता और राष्ट्र हित से जुड़े अध्ययन के लिए विदेशी अंशदान लेने की अनुमति नहीं है। इसी आधार पर गृह मंत्रालय ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए एनजीओ का FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ या @ARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने चुनावों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए डाक मतपत्रों की गिनती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अभी तक ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती से अलग होती थी। ये कभी कभी डाक मतपत्रों की पूरी गिनती होने से पहले ही समाप्त हो जाती थी। इससे प्रक्रिया में एक रूपता को लेकर भ्रम और प्रश्न उठते थे। इस समस्या के समाधान के लिए निर्वाचन आयोग ने ये अनिवार्य कर दिया है कि ईवीएम वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर सभी डाक मतों की गिनती के बाद ही शुरू होगा। इससे मतगणना की दोनों विधियों के बीच एक रूपता सुनिश्चित होगी और विसंगति की संभावना समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन तथा प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने भारत के बढ़ते ई गवर्नेंस इकोसिस्टम के माध्यम से शासन को एक सहज, पारदर्शी और समावेशी डिजिटल अनुभव में बदल दिया है।
सार्वजनिक सेवाओं से लेकर वित्तीय सशक्तिकरण तक भारत का ई गवर्नेंस इकोसिस्टम नागरिक केंद्रित अनुभव को एक नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्रौद्योगिकी शासन को और अधिक सुलभ तथा समावेशी बना रही है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ई गवर्नेंस सरल, प्रभावी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है।
मेरे हिसाब से ई गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस, इकोनॉमिकल गवर्नेंस, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही उपयोगी है और आज के समय में जब समय की कठिनाई है तो कम समय में करने वाला काम इससे होता है।
जैम त्रिमूर्ति जनधन आधार और मोबाइल भारत के भलीभांति विकसित डिजिटल परिदृश्य के प्रमुख प्रवर्तक बन गए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के तहत सरकारी लाभ, सब्सिडी और भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजने के लिए जैम नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच EKYC आधार आधारित सत्यापन को तत्काल, कागज रहित और धोखाधड़ी मुक्त बनाता है, जिससे निर्बाध, पारदर्शी और सुरक्षित शासन सुनिश्चित होता है। सरकारी EMarketplace जैम से खरीद में क्रांति आई है। इसने लाखों छोटे व्यवसायियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को फलने फूलने में सक्षम बनाया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। वहीं डिजी लॉकर नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज संग्रहित करने की सुविधा देता है। भाषिणी अंतरभाषा संचार को सक्षम बनाता है और iGOT कर्मयोगी प्रमुख डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म बनकर के उभरा है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के सैयद खालिद ने बताया कि उमंग ऐप ने उन्हें अपना काम आसानी से और तेजी से पूरा करने में मदद की है।
मैंने उमंग ऐप के बारे में अपने दोस्तों से सुना था और मैंने ही डाउनलोड की। उमंग ऐप मुझे बहुत ही फायदेमंद लगी। उमंग ऐप से मैं घर बैठे बैठे अपने काम आसानी से कर पाता हूँ।
प्रौद्योगिकी अब सरकार और जनता के बीच सेतु बन गई है। ये सभी प्लेटफॉर्म मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि शासन काउंटरों और गलियारों तक सीमित ना रहे, बल्कि डिजिटल रूप से समावेशी और पारदर्शी ढंग से भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचे। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। माल और वस्तुओं की व्यापक रेंज पर कर की दर घटने से नागरिकों को अत्यधिक राहत मिली है।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में व्यापक सुधारों को मंजूरी देते हुए इसे आम लोगों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए अधिक सरल और लाभकारी बना दिया है। अब तक लागू होने वाले 5, 12, 18 और 28% की 4-स्तरीय संरचना को घटाकर केवल 5 और 18% की 2-स्तरीय संरचना कर दी गई है। इसके साथ ही तम्बाकू और विलासिता की वस्तुओं जैसे चुनिंदा वस्तुओं पर 40% का अतिरिक्त स्लैब लगाया गया है। परिषद का कहना है कि दरों का यह युक्ति संगतीकरण आम आदमी, श्रम प्रधान उद्योगों, किसानों, कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य चालकों को राहत देगा। नए ढांचे के तहत कई आवश्यक खाद्य पदार्थ जैसे अति उच्च तापमान वाला दूध, छेना, पनीर, पिज्जा, ब्रेड और चपाती को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की जरूरतें और सस्ती होंगी। कृषि क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर, कटाई मशीनरी और खाद बनाने वाली मशीनों जैसे उपकरणों पर GST 12 से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों पर GST 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों, युवा पेशेवरों और गिग श्रमिकों को सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली निवासी अभय प्रताप ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है।
मैं अभी अपने लिए GST दरों में कटौती होने के कारण जो 28% से 18% हुआ है, अपने लिए बाइक लेने जा रहा हूँ इस दिवाली में। सरकार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
नई पीढ़ी के GST सुधारों से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हमास की आलोचना की है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली शांति योजना पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होने से रोके जाने के बाद वीडियो के माध्यम से श्री अब्बास ने संबंधित भूमि पर फलस्तीन का दावा दोहराया। एशिया कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में कल दुबई में सुपर फोर के मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर प्रतियोगिता के खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई। रविवार को फाइनल में उसका सामना भारत से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
धन्यवाद कनकलता। GST सुधार जारी रहने संबंधी प्रधानमंत्री का बयान आज के अखबारों की प्रमुख खबर है। करों का बोझ और घटेगा, बढ़ेगी बजट, दैनिक जागरण की पहली हेडलाइन है। पत्र लिखता है, प्रधानमंत्री ने दिया आत्मनिर्भरता का मंत्र, कहा किसी देश पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। पंजाब केसरी लिखता है, GST दरें और कम होंगी। जनसत्ता की भी ऐसी ही सुर्खी है, भारत के पहली बार ट्रेन से अग्नि प्राइम मिसाइल दागने पर कामयाबी शीर्षक से। राजस्थान पत्रिका लिखता है, चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हुआ भारत। अमर उजाला की पहली सुर्खी है, वित्तीय गड़बड़ियों के कारण वांगचुक की संस्थाओं के FCRA लाइसेंस निरस्त। बिग 21 की आज होगी विराई, नवभारत टाइम्स के शब्द हैं। 6 दशकों की सेवा, साहस की अनगिनत कहानियां, ऐसा योद्धा जिसने राष्ट्र के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जनसत्ता ने इसे भारत की वायु शक्ति में एक ऐतिहासिक अध्याय के समापन का प्रतीक बताया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। MiG-21 लड़ाकू विमान 62 वर्ष की सेवा के बाद आज वायुसेना से सेवानिवृत्त होंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आतंकवादी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त न करने पर बल दिया। आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने में दुनिया के दोहरे मानदंडों की आलोचना की। निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गिनती की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कारण सोनम वांगचुक के संगठन का FCRA प्रमाण पत्र रद्द किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।